शिष्यपन की कसौटी। यदि कोई मसीह में हो तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे नई हो गई हैं। मन परिवर्तन की परिस्थितियों की श्रृंखला का विशद वर्णन संभव नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि परिवर्तन हुआ ही नहीं। ख्रीष्ट ने निकुदेमुस से कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है पर नहीं जानता वो कहां से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, यूहन्ना 3:8। अदृश्य वायु की तरह, जिसे देखना संभव नहीं किंतु जिसके प्रभाव की प्रतीति हो जाती है, ईश्वर का आत्मा मनुष्य के में चेतना डाल रहा है। ये प्राणमयी शक्ति जो अदृश्य है, मनुष्य को पुनः जागृत कर अनुप्राणित करती तथा नूतन जीवन के स्पंदन भर देती है। यही अदृश्य शक्ति मानव में ईश्वर की प्रतिमूर्ति की स्थापना करती है। इस पवित्र आत्मा के कार्य अनुभव गम्य नहीं, अप्रत्यक्ष हैं, किंतु इसके प्रभाव प्रत्यक्ष हैं। यदि इससे हृदय में नूतन चेतना आई तो सारा जीवन उसकी साक्षी में अभिनव उल्लास प्रकट करेगा। हम स्वयं अपने बल पर हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते, हम स्वयं अपनी सामर्थ्य से ईश्वर में तदात्म्य नहीं हो सकते, हम अपनी भक्ति अथवा अपने पुण्य पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी हमारे जीवन में ये साफ प्रकट होगा कि ईश्वर का अनुग्रह रहने से चरित्र में, अभ्यासों में, उद्योग और उद्देश्य में परिवर्तन साफ झलकेगा। पहले ये कैसे और क्या थे और अब कैसे और क्या हैं, इसकी तुलना करने से आपका परिवर्तन स्पष्ट हो जाएगा। चरित्र का पता आकस्मिक भलाई अथवा बुरी के कार्यों से नहीं मिलेगा, किंतु स्वाभाविक वचनों और कार्यों की प्रकृति और लक्ष्य से मिलेगा। ये भी हो सकता है कि चाल चलने के बाह्य व्यवहार में सफाई और पवित्रता आ जाएगा, किंतु यीशु की अनुप्राणित करने की शक्ति ना आए। अपने प्रभाव को बढ़ाने की इच्छा और दूसरों की आंखों में बढ़ा सम्मानित होने की अभिलाषा भी जीवन को स्वच्छ और पवित्र बना सकती है। आत्मगौरव भी कुवासनाओं में पड़ने से हमें रोक सकता है, स्वार्थी भी दान पुण्य आदि कर सकता है। तब ये कैसे निर्णय हो सकता है कि हम लोग किस धग में हैं, ईश्वर के अथवा शैतान के? तब प्रश्न ये उठेंगे, हृदय पर किसका अधिकार है, हमारे विचार किस पर केंद्रित हैं, किसके विषय में हम संभाषण करना पसंद करते हैं, किसकी ओर हमारे समस्त अनुराग तथा सारी स्फूर्ति लगी हुई है। यदि हम यीशु के वर्ग में हैं, यीशु के हैं, तो हमारे समस्त विचार उनके अधीन हैं और हमारी सारी मधुर कल्पनाएं उन्हीं की हैं। हम जो कुछ भी हैं और हमारा जो कुछ भी है, सभी कुछ उन पर अर्पित है। हम तब उनका रूप हृदय में स्थापित करने को, उनकी चेतना में श्वास लेने को, उनके आदेश मानने को और उन्हें सदा प्रसन्न करने को प्रस्तुत रहते हैं। जो कोई भी यीशु में आत्मविसर्जन कर नए जीवन की प्राप्ति करेगा, वो पवित्र आत्मा का नया फल लाएगा। वे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गलातियों 5:22-23। अब ये लोग पहले की भोग लिप्सा, आसक्ति और लालच के अनुसरण में अपने चरित्र कुत्सित नहीं बनाएंगे, किंतु ईश्वर के पुत्र पर दृढ़ विश्वास कर ये उनका अनुसरण करेंगे। उनके विमल चरित्र की प्रतिच्छाया अपने चरित्र पर लाएंगे और उनके अनुसार ही पवित्र और पुनीत हो उठेंगे। जिन वस्तुओं से वे पहले घृणा करते थे, उनको वे अब प्यार करते हैं, और जिनसे पहले वे प्रेम रखते थे, उनको अब घृणा करते हैं। घमंडी और आत्मप्रशंसी विनीत और नम्र हो जाते हैं, बकवादी और जिद्दी गंभीर तथा उदार बन जाते हैं, शराबी संयमी हो जाता है, लंपट पवित्र बन जाता है, संसार के मिथ्या और पाखंडपूर्ण व्यवहार तथा रीतियां उठ जाती हैं। इसी से कहा गया है कि सच्चे ईसाई ब्राह्मा डंबर से भरे नहीं देखते, किंतु वे हृदय में छिपे हुए मनुष्यत्व को परखते हैं। तुम्हारा सिंगार ऊपरी न हो जैसा बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, पर हृदय के गुप्त मनुष्यत्व उस नम्र और शांत आत्मा के अविनाशी शोभा सहित। 1 पत्रस 3:3-4। यदि पश्चाताप ने सुधार नहीं लाया तो वह वास्तविक पश्चाताप का आदर्श हो नहीं सकता। यदि उसने बंधक की वस्तु वापस कर दी, चोरी की हुई चीज लौटा दी, अपने पाप स्वीकार कर लिए और ईश्वर तथा अपने बंधुओं पर सच्चा प्रेम दिखाया, तो पापी भी मृत्यु से जीवन की ओर प्रगति करेगा। जब हम भूल भ्रांतियों से भरे हुए हृदय के लिए अपने पाप के गट्ठर को संभाले ख्रीष्ट के पास उपस्थित होते हैं और उनके अनुग्रह तथा क्षमाशीलता के भागी बन जाते हैं, तो हृदय में प्रेम का सोता फूट पड़ता है, सारे गट्ठर का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि ख्रीष्ट का अनुग्रह आदेशों को भी मधुर बना देता है। फिर तो गंभीर कर्तव्य आनंद से ओतप्रोत मालूम पड़ता है, बलिदान उल्लासमय हो जाता है। वही मार्ग जो पहले घटाटोप अंधकार से आच्छादित था, पुनीत प्रभाकर की उज्ज्वल प्रभा से आलोकित हो उठता है। ख्रीष्ट के चरित्र की मधुरता उनके शिष्यों में स्पष्ट दीख पड़ेगी। ख्रीष्ट को तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में आनंद मिलता था। ईश्वर पर प्रगाढ़ प्रेम, उनके गौरव के लिए अदम्य उत्साह हमारे मुक्तिदाता के जीवन को स्पंदित करते रहे। प्रेम ने यीशु के सारे कार्यों को सुशोभित एवं उन्नत करा दिया। प्रेम ईश्वर से है। यह उस हृदय में उद्भूत नहीं हो सकता जिसने अपने आप को ईश्वर पर अर्पित नहीं किया। यह उसी हृदय में रहेगा जहां यीशु अधिष्ठित हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:18। स्वर्गीय अनुग्रह से जो हृदय आभासित एवं नवीन हुआ है, उसके कार्यों का सिद्धांत केवल प्रेम ही रहेगा। यह चरित्र को विमल, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अनुशासित, उद्वेगों और काम को संयमित, शत्रुता को परिवर्तित तथा अनुरागों को उन्नत बना देता है। इस ईश्वरीय प्रेम को आत्मा में स्थापित कर लेने से जीवन मधुर हो उठता है तथा समस्त वातावरण आलोकमय स्पंदन से भर जाता है। ईश्वर के सभी पुत्रों को साधारणतः और उनके अनुग्रह पर विश्वास करने वाले नए धार्मिक लोगों को विशेषतः दो बड़े भूलों से सतर्क रहना चाहिए। पहली भूल तो वही है जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, अर्थात अपने कामों, अपनी शक्ति के भरोसा पर ईश्वर में तादात्म्य की चेष्टा। जो कोई ईश्वर के विधान के अनुरूप चलता हुआ अपनी सामर्थ्य से परिवर्तित होना चाह रहा है, वह असंभव की चेष्टा कर रहा है। मनुष्य जो कुछ अपने बल पर और ख्रीष्ट की सहायता के बगैर करेगा, वह स्वार्थ और पाप से भरा रहेगा। केवल ख्रीष्ट का अनुग्रह ही विश्वास के द्वारा हमें पवित्र बना सकता है। इस भूल के विपरीत दूसरी भूल है, और वह भी कम खतरनाक नहीं। इसमें यह भ्रांति होती है कि ख्रीष्ट पर विश्वास करने से ईश्वर के नियमों के पालन से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात अब विश्वास के द्वारा ही ख्रीष्ट के अनुग्रह की प्राप्ति होगी, तो अपनी मुक्ति के लिए हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन यहां इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि आज्ञा पालन का अर्थ आदेशों का बाह्य अर्थ में पालन नहीं होता, परंतु पूर्ण सेवा होता है। ईश्वर की व्यवस्था ईश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्ति है। वह प्रेम के सिद्धांत का दूसरा रूप है, और इसी सिद्धांत पर उसके लौकिक एवं पारलौकिक साम्राज्य की नींव पड़ी है। यदि हमारे हृदय ईश्वर के अनुरूप होकर जीवन ज्योति और जागृति से भर जाएं, इसी हमारी आत्मा में ईश्वरीय प्रेम सुदृढ़ हो जाए, तो क्या ईश्वरीय व्यवस्था का पालन हम जीवन में न करेंगे? जब प्रेम के सिद्धांत ने हृदय में जड़ जमा दिया, जब मनुष्य का पुनर्जागरण ईश्वर की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ, तो ईश्वर की नई वाचा तो पूरी हो गई। मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। इब्रानियों 10:16। फिर जब आज्ञाएं हृदय में अंकित हो गईं, तो क्या वे जीवन को अपने अनुरूप नहीं बनाएंगी? शिष्यपन की सच्ची परख आज्ञा पालन में है, क्योंकि आज्ञा पालन प्रेम की सेवा और उसके प्रति भक्ति और श्रद्धा ही है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाएं माने। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। 1 यूहन्ना 5:3-2:4। विश्वास आज्ञा पालन में बाधा नहीं डालता, ईश्वर के नियमों से छुटकारा नहीं दिलाता। आज्ञा पालन से छुटकारा दिलाना तो दूर, विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें यीशु के अनुग्रह प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। और जिसके फलस्वरूप हम आज्ञा पालन में दत्तचित्त होते हैं। लेकिन आज्ञा पालन के कारण हम अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त करते। मुक्ति तो ईश्वर का स्वतंत्र वरदान है और वह विश्वास से ही प्राप्त होती है, किंतु विश्वास का फल आज्ञा पालन है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। 1 यूहन्ना 3:5-6। बस वही सच्ची कसौटी है। यदि हम यीशु में वास करते हैं, यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में अधिष्ठित हैं, तो हमारे मनोभाव, विचार, कार्य सभी ईश्वर की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति रूप पवित्र व्यवस्था के अनुरूप होंगे। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना जो धर्म के कम करता है। वही उसकी नाई धर्मी है। 1 यूहन्ना 3:7। सिनै में दिए 10 आज्ञा में जैसा प्रकट हुआ है, उसी ईश्वरीय प्रेम के मापदंड के द्वारा धार्मिकता की वही परिभाषा हुई है। वह तथा कथित विश्वास, जिसके बारे यह कहा गया है कि वह ईश्वर के आज्ञा पालन से मनुष्य को छुटकारा दिला देता है, वह विश्वास नहीं है, वह तो कल्पना है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो इफिसियों 2:8, याकूब 2:17। यीशु ने पृथ्वी में पदार्पण करने के पहले अपने बारे यह कहा था, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बनी है। भजन संहिता 40:8। और जैसे ही वे स्वर्गरोहण कर चुके, उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यूहन्ना 15:10। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। 1 यूहन्ना 2:3-6। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना छोड़ गया है कि तुम उसकी लीक पर चलो। 1 पत्रस 2:21। अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए जो शर्त पहले थी वह अब भी है। जैसी शर्त हमारे प्रथम माता पिता के समक्ष उनके पतन के पूर्व पैराडाइज में थी, वैसी ही वह अब भी है। और वह शर्त यही थी कि ईश्वरी व्यवस्था का पूर्ण पालन, पूर्ण धार्मिकता का भाव। यदि इस शर्त से किसी भी कम शर्त पर अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाए तो सारे विश्व का अनंत खतरे में पड़ जाए। तब समझिए पाप का मार्ग प्रशस्त हो उठे और यातनाओं तथा दुश्चिंताओं का बाजार गर्म हो उठे। पतन के पहले आदम यदि चाहता तो ईश्वरीय व्यवस्था का पालन कर शुद्ध चरित्र का गठन कर लेता, किंतु वह असफल हुआ। उसने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया। फिर उसके पाप के कारण हमारी प्रकृति भी अधोगामी हुई। अब हम भी धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग पापी और अशुद्ध हैं। अतएव हम लोग ईश्वरी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं मान सकते। हम में वह पवित्रता जन्मजात नहीं जिसके बल पर ईश्वर की व्यवस्था का हम पालन कर सकते हैं, किंतु ख्रीष्ट ने हमारे उद्धार का एक मार्ग प्रशस्त किया है। वे उन कष्टों और मोहक तृष्णाओं के बीच जीवन स्थापन कर चुके, वे जिनके बीच हम रहते हैं। उन्होंने निष्कलंक जीवन व्यतीत किया, उन्होंने हमारे लिए प्राण त्याग किया, और अब वे हमारे पापों को लेने तथा अपनी धार्मिकता देने को प्रस्तुत हैं। यदि आप अपने को उन पर न्योछावर कर दें और उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लें, तो चाहे कितना भी पापी आपका जीवन क्यों न रहा हो, उनके कारण आपकी गिनती धर्मियों में होगी। आपके स्वभाव के जगह यीशु का स्वभाव रहेगा, और ईश्वर के समक्ष आप वैसे रूप में ग्रहण कर लिए जाएंगे जैसे आपने कभी कोई पाप ही नहीं किया हो। केवल इतना ही नहीं, यीशु हृदय तक को परिवर्तित कर देते हैं। वे आपके हृदय में विश्वास के द्वारा निवास करते हैं। आपके लिए अब आवश्यक है कि विश्वास की दृढ़ता एवं आत्मसमर्पण की नम्रता के बल पर आप ख्रीस्ट से इस संबंध को सुदृढ़ करते जाए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, वे आपके अंतर में तब तक ऐसी सामर्थ्य भरते जाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति एवं कर्म उनके मन के मुताबिक हों। अतएव आप कह सकेंगे कि मैं शरीर में अब जो जोता हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। अपने शिष्य को यीशु ने ऐसा ही कहा था, बोलने वाले तुम नहीं हो, पर तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलने वाला है। मत्ती 10:20। फिर अब यीशु आपके अंतस्थल को स्पंदित करते रहेंगे तो आप उन्हीं की शक्तियों को प्रत्यक्ष करेंगे। धार्मिकता के महान कार्य आज्ञा पालन के विशद कार्य ही आप कर पाएंगे। अतएव हम में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम गर्व कर सकें। आत्मश्लाघा अथवा आत्मगौरव के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं। ख्रीष्ट की धार्मिकता जो हम में जगाई गई है, वही हमारी आशा की दृढ़ भित्ति है, और यह ख्रीष्ट के द्वारा होता है जो हम में कार्य करता है। जब हम विश्वास का उल्लेख कर रहे हैं तो इस धार्मिक विश्वास अथवा भक्ति और एक दूसरे प्रकार के छिछले विश्वास में जो फर्क है उसे समझ लें। ये छिछला विश्वास भक्ति से अलग है। ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की शक्ति और उसके वचन ऐसे सत्य हैं जिन्हें शैतान और उसके सारे शिष्य भी अपने हृदय से नहीं इनकार कर सकते। बाइबल में लिखा है कि दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, किंतु ये विश्वास नहीं है। जहां ईश्वर पर विश्वास और साथ साथ अपना समर्पण भी हो, जहां हृदय उन पर न्योछावर कर दिया जाए, अनुराग उन पर ही केंद्रित कर दिए जाएं, वही विश्वास है। यही धार्मिक विश्वास प्रेम द्वारा क्रियाशील होता है और आत्मशुद्धि करता है। वह हृदय जो अपनी पूर्वावस्था में ईश्वरीय व्यवस्था को ग्रहण नहीं करता था, उसके प्रतिकूल चलता था, अब उसकी आज्ञाओं को मानकर प्रमुदित होता है और स्तोत्रकर्ता के शब्दों की प्रतिध्वनि करता है। आद, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। भजन संहिता 118:87। तब व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूर्ण होती है, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं करते, प्रत्युत आध्यात्मिक की। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ख्रीस्ट की क्षमाशील प्रीति का स्वाद चख लिया है, और इसलिए ईश्वर के सच्चे पुत्र होने के इच्छुक वे हो उठे हैं, किंतु उन्हें कुछ ऐसा भान होता है कि उनका चरित्र सिद्ध नहीं है, जीवन त्रुटिपूर्ण है। अब ऐसे लोगों को यह संभ्रम होगा कि उनका हृदय पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध एवं पुनः नवीन बना या नहीं। ऐसे लोगों को मेरी वही सलाह होगी कि हताश होकर पीछे न मुड़ें। हमें तो यीशु के पैरों के सामने झुककर अक्सर रोना ही पड़ेगा। हमारे दोष और भूल ही असंख्य हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम आशा छोड़ दें और उत्साह खोकर हताश हो जाएं। शत्रु हमें हरा सकता है कि हम सदा के लिए परित्यक्त नहीं रहेंगे एवं ईश्वर द्वारा अग्राह्य घोषित नहीं होंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। ख्रीस्ट ईश्वर के दहिने हाथ की ओर हैं और वे सदा सदा हमारे परित्राण के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं। प्रिय यूहन्ना ने कहा है, है मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। 1 यूहन्ना 2:1। फिर ख्रीस्ट के वे शब्द भी मत भूलिए, पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। 16:26। उनकी इच्छा है कि आप उनके रूप में लौट जाएं, ताकि वे अपनी पवित्रता आप में प्रतिबिंबित देख सकें। बस यदि आप अपने आप को उन पर छोड़ दें तो वे आपसे श्रेष्ठ कार्य शुरू कर ख्रीस्ट के दिनों तक बराबर श्रेष्ठता भरते जाएंगे। और भी अधिक श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए और भी भक्ति से उन पर विश्वास कीजिए। जैसे जैसे हम अपनी खुद की तकात पर विश्वास करते जाएं, वैसे वैसे ही अपने मुक्तिदाता यीशु की शक्ति पर भरोसा करते चलें और अपनी मुखक्षी की वास्तविक प्रभा के स्रोत यीशु की सराहना करते चलें। आप यीशु के समक्ष जितना निकट होते चलेंगे, उतने ही सदोष अपनी आंखों में ही स्वयं बचेंगे। इसका कारण यह है कि निकटता के कारण आपकी दृष्टि साफ होती जाएगी और आपके दोष उनकी पूर्णता के तुलना में स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतीत होंगे। इसी से ये प्रमाण मिल जाएगा कि शैतान के जाल में अब अपनी शक्ति खो रहे हैं और ईश्वर का आत्मा आपको जागृत कर रहा है। जिस हृदय में अपने पाप की प्रतीति नहीं, उस हृदय में यीशु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का निवास असंभव है। ख्रीष्ट के अनुग्रह द्वारा परिवर्तित आत्मा में उसके ईश्वरीय चरित्र पर श्रद्धा भर जाएगी। किंतु यदि हम अपने नैतिक पतन का अवलोकन न कर सकें, तो ये बात निर्विवाद रहेगी कि हमें ख्रीष्ट के धवल प्रकाशमय सौंदर्य और सुषमा की प्रतीति नहीं हुई। जितना भी हम अपने चरित्र और जीवन में सराहना के योग्य गुण कम देखेंगे, उतना ही अपने मुक्तिदाता के चरित्र से सराहना के योग्य गुण अधिक देख सकेंगे। अपने पापों को देख हम उनकी ओर तलपते हैं जो हमें क्षमा कर सकते हैं। फिर अपनी कमजोरी जानकर जब आत्मा ख्रीष्ट की ओर प्राणपण से दौड़ पड़ती हैं, तो यीशु अपनी सारी शक्ति उसके समक्ष खोल देंगे। अपनी आवश्यकता की भावना जितनी जबरदस्त तरीके से हमें उनकी ओर और ईश्वर की ओर प्रेरित करेगी, उतने ही भव्य रूप हम उनके चरित्र को देख पाएंगे और उतने ही पूर्ण रूप में हम उनके रूप को प्रतिबिंबित कर सकेंगे। यीशु मेरे अंतरस्थल में कर दो अंकित यह बात अभी, तुम ही एक जीवनदाता, मुक्तिदाता, करुणामय भी, छूटे मेरा तन मन धन भी, टूटे जग के संबंध सभी, पर मेरा तेरा जो नाता वह नहीं नहीं टूटे कभी।